سورة توبة. براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين. اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اعلان کر دو. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع دے دو کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کے خلاف تمہاری مدد کی، اور تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. پھر حرمت کے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کا محاصرہ کر لو، اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکات ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَى كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ جب تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. یہ تھا رکوع نمبر 7، اس کا عنوان کیا ہے؟ مہلت ختم. اللہ کی طرف سے اب مہلت ختم ہو گئی. اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ بات واضح ہو جائے. سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمان وہاں آ گئے، سارے بت ٹوٹ گئے، سب کچھ ہوا، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور نہیں کیا. 1 سال کا عرصہ گزرا، اگلے سال جب 9 ذی الحج ہوا اور حج کا موسم آیا تو اس وقت پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ پھر بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اب جا کے یہ اعلان کر دو کہ براءت من اللہ ورسولی الی الذین آحدت من المشرکین. کیا اعلان تھا؟ کہ 4 مہینے یعنی ذی الحج کے مہینے سے لے کے اگلے 4 مہینے تک تم اس مکہ میں آ سکتے ہو، رہ سکتے ہو، کچھ بھی کرو. اس کے بعد اگر تمہیں آنا ہے تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ اسلام قبول کرو گے، ورنہ اس کے بعد تم پہ وہ راستے بند ہو جائیں گے. یہ 4 ماہ کی مہلت کیوں دی گئی؟ تاکہ مزید سوچ سمجھ لیں، مسلمانوں کے ساتھ رہیں. پھر اس میں یہ ادب بھی سکھایا گیا کہ اگر واقعی وہ تم سے دین سیکھنا چاہیں تو تم ان کی مدد کرو. اور پھر اس کے بعد 4 ماہ جب گزر گئے، پھر اس کے بعد مکہ میں کوئی کافر نہیں رہ سکا. اور وہ دن اور آج کا دن دیکھ لیجئے، قیامت تک دیکھیں، وہ لوگ جو ایک وقت میں وہاں کے متولی تھے، بڑے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا، قیامت تک کے لیے وہ وہاں داخل نہیں ہو سکتے. اور میں اس چیز کو کب محسوس کرتی ہوں؟ جب اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ مکہ بلواتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ جدہ سے جب آپ مکہ جاتے ہیں تو بالکل ایک خاص مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں پہ پھر ایک چیک پوسٹ ہی بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اب اس حد سے آگے کوئی کافر نہیں جا سکتا. ایک ساتھ راستہ بنا ہوا ہے جو دوسری طرف جاتی ہے، لیکن مکہ نہیں جاتے. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہاں انہوں نے اس طرح سے ایک رحل سی بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے. یقین کریں جو وہاں سے گزرتے وقت میرے دل کی کیفیت ہوتی ہے، میں کہتے ہیں اللہ تیرا ہی احسان ہے، ہم نے تو کوئی قیمت نہیں دی اس اسلام کی، ورنہ ہمیں یہاں سے آگے کون جانے دیتا. میں سوچتی ہوں جب میں اس بات کی حکمت پہ غور کرتی ہوں، یقین کریں میں ایجپٹ میں تھی لاسٹ کچھ منتھ پہلے، تو میں نے وہاں جتنے مسلم دیکھے اتنے ہی نان مسلم دیکھے، لیکن وہی اپنے ننگی ٹانگوں میں اور عجیب یعنی عجیب حلیے بن چکے ہیں ان ملکوں کے بھی جہاں ٹورسٹ سٹی بن چکے ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت پورے ٹورسٹ سٹی ہیں، کہ وہ صرف ان کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کی کمائی پہ جاتا ہے، اور مسجدیں بند ہو چکی ہیں اور اس کو ٹورسٹ پلیس بنا دیا چکا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں جتنا صدمہ ہمیں وہاں جا کے کچھ ایسی چیزوں کو دیکھ کے ہوا. لیکن پھر خوشی یہ سوچ کے بھی ہوئی کہ چلو مسجدوں میں قبریں ہیں تو مسجد تو رہی نہ تو اچھا ہی ہوا. لیکن مسجدوں کے وقت میں وہاں لوگ موویز بنا رہے اور تصویریں کھینچتے. तो मैंने देखा कि ये मुसलमानों के मुल्कों में ये कुछ आते हैं, फिर उसे माहौल बदलता है, महंगाई बढ़ती है और जो सारी चीज़ें आपको पता है ऐसी जगहों में होती हैं। मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने जो बैतुल्ला, मक्का और मदीना में जो पाबंदी लगाई है इसमें ये हिकमत है। अगर इजाज़त होती, मैं आपको चैलेंज करके बता सकती हूँ कि अगर इजाज़त होती तो हर साल हज पे जो लाखों मुसलमान होते हैं, करोड़ों, तो उतने ही वहाँ गैर मुस्लिम उनको देखने के लिए पहुँच जाते हैं। दो नुकसान होते हैं, एक तो जगह की मसला और दूसरी बात है कि वहां जाके भी अगर यही कुछ देखना पड़ता तो फिर क्या है। ये अलग बात है कि अब कुछ मुसलमानों ने भी, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि वहां मॉल्स में और ऐसी चीजें, ऐसे बुत सजा लिए कि वहां जाके भी दुनिया लोगों को नहीं भूलती और वो वहां से भी वही चीजें खरीद के लाते हैं जो यहां से जाके खरीदते हैं। लेकिन बहरहाल इस रुकू में उसी मोहलत का जिक्र है कि अब इसके बाद तुम वहां नहीं जा सकते। हमारे अमल की बातें इसमें बहुत सारी हैं, मैं अमल की बातों ही में इस रुकू का ऐसा कर देती हूँ। पहली बात क्या है कि मोहलत देनी चाहिए। एक तरीका क्या था, आठ जिलहज को जब मक्का फतह हुआ तो कहा जाता चलो निकलो, पुलिस बुलाई जाती, डंडे के जोर पे लाठी चार्ज किया जाता, आंसू गैस फेंकी जाती, सब काफिरों को वहां से निकाल दिया जाता। नहीं, तहम्मुल, अल्लाह का दीन मोहलत देता है। काफिर कोई मोहलत देता है तो इस्लाम को क्यों ना देगा। आज हम किसी को अपनी मस्जिद में देख लें जो हमारे तरीके से नमाज नहीं पढ़ता, हम अपनी नमाज छोड़ के उसको मारते हुए बाहर से निकाल देते हैं। ऐसे वाकत मुसलमानों की मस्जिदों में होते हैं कि तुम निकल जाओ, तुम्हें जुरत कैसे हुई कि तुम अब हमारे तरीके से खिलाफ नमाज पढ़ते हो। और अल्लाह ताला एक साल से ज्यादा मोहलत देता है फिर भी 4 महीने मजीद मोहलत दे के छोड़ता है कि आप सोच लो। और बेशुमार लोग मुसलमान हो गए, सिर्फ वही निकले होंगे कि जिनके दिल में बुग़्ज़ था, वरना लोगों ने इस्लाम कबूल किया कि अच्छा इतने असूल, इतने खूबसूरत तरीके हैं। तो लिहाजा पहली चीज क्या है, मोहलत देनी चाहिए लोगों को। दूसरी चीज, इससे एक चीज जो मैं गलती का अजाला करना चाहूंगी, हमारे यहाँ एक तसव्वुर है कि जुमे के दिन जो हज आता है उसको हज अकबर कहते हैं। यहाँ लफ्ज भी गुजरा हज अकबर, तो इस पर ये बात दुरुस्त कर लीजिए कि हर हज हज अकबर है। अरब में हज को हज अकबर कहते हैं और उमरे को हज असगर कहते हैं, तो लिहाजा हर हज अकबर ही होता है। बाज लोग इस बात पे भी बहुत झगड़ते हैं कि हमने इस साल हज जरूर करना है क्योंकि वो जुमे के दिन पे आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज जो हमें इससे पता चली कि कुफर को खत्म करना है, काफिर को नहीं। इस्लाम का हदफ काफिर नहीं, कुफर है। चौथी चीज, तबलीग की अहमियत, आखिरी दम तक तबलीग। उनको कहा आओ देखने, ये तुम्हें देखें, इस्लाम का माहौल देखें और इसके बाद तुम फिर इनको जहां छोड़ो के पकड़ो। फिर एक और बात कहूंगी इस रुकू के नाते से, बाज दफा ये सूरत तौबा जो है इस वक्त सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी सूरत है गैर मुस्लिमों में। बाज जगह मुतालबे तक ये किए गए हैं मुसलमानों से कि इस सूरत को कुरान पाक से निकाल दो। मैं किसी मुल्क में थी आज से 1-2 साल पहले, तो वहां हर जुबान पे ये बात आम थी कि हमारे मुल्क में इस वक्त यही शोशा फैला हुआ है कि सूरत तौबा को निकाल दो कुरान से, क्योंकि ये काफिरों से और दुश्मनों से लड़ने की बात करता है। और ये जो भी आयतें गुजरी हैं कि फक्तलूहुम मिन हैसु वजदतुम, ये आयतें पेश की जाती हैं कि देखो तुम्हारा इस्लाम क्या कहता है कि इन काफिरों को जहां पकड़ो मार दो। अब बताइए कि ये उस मौके की आयतें, ये कब कही जा रही हैं? ये 4 माह की मोहलत की बात है, ये एक टेक्स्ट की आयतें, ना इससे पहले ये बात का हुक्म था, ना आज है ना पहले था। तो लिहाजा आउट ऑफ टेक्स्ट बातें जो करके लोगों को यानी दीन का गलत रुख पेश करते हैं तो वो बात दुरुस्त नहीं। आपको भी मैं यही हमेशा कहूंगी, कभी भी दीन की कोई बात सिर्फ एक आयत करके लोगों के सामने मत पेश किया करें। मुख्तलिफ एंगल सामने रखेंगे तो फिर बात समझ आएगी, वरना बाज़ दफ़ा तो कुछ और ही चीज़ खराब हो जाती है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम की बेहतर तरीके से तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 8, कैफ यकून लिल मुशरिकीन अहद इंदल्लाह व इंद रसूलिह इल्लल्लज़ीन आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम। मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कैसे रख सकता है सिवाय इनके जिनसे तुमने अहदो पैमा मस्जिद हराम के पास किया है। जब तक वो लोग तुमसे मुआहदा निभाए तुम भी इनसे वफादारी करो। अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है, इनके वादों का क्या एतबार। इनका अगर तुम पर गलबा हो जाए ना तो ये कराबत दारी का ख्याल करेंगे और न अहदो पैमा का। अपनी जुबानों से तो ये तुम्हें खुश कर रहे हैं लेकिन इनके दिल नहीं मानते और इनमें से अक्सर तो फासिक हैं। उन्होंने अल्लाह की आयतों को बहुत कम कीमत पर बेच दिया और इसकी राह से रोका। बहुत बुरा है जो ये कर रहे हैं। یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا مطلق لحاظ نہیں رکھتے، یعنی بالکل لحاظ نہیں رکھتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، لیکن اس کے باوجود فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. ہم تو جانتے والوں کو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ باز آ جائیں. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے اس کا کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بیعیدیکم، تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب کرے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی رحمت سے توجہ کرتا ہے. ام خسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ اب تک اللہ نے تم سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. رکوع نمبر 8، اس کا عنوان کیا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس میں کفر کے علم برداروں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ جو معاہدات ہوتے ہیں اس کے بارے میں چند باتیں ہمیں بتائیں. پہلی بات یہ بتائی کہ اگر ان کو مسلمانوں پہ غلبہ آئے گا تو رشتہ داری کا خیال بھی نہیں کریں گے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. مکہ کے اندر جتنی مخالفت ہوئی وہ رشتہ داروں کی طرف سے ہوئی. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں بتائی کہ یہ اپنے عہد و پیمان کا بھی پاس نہیں کریں گے، یعنی تم سے عہد کر لیں گے لیکن جو ہی ان کا اپنا مفاد ہوگا اس عہد کو توڑ لیں گے. پھر یہ بتایا کہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرتے ہیں لیکن ان کے دل تمہارا انکار کرتے ہیں. آج بھی بعض رشتہ داریوں میں تعلقات کی نہج یہی ہوتی ہے، زبان پہ تو ان کی باتیں تعریفیں لیکن دل میں ایک دوسرے پہ لان تان ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو بتائی گئی ان کے بارے میں کہ وہ فاسق ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں آنے والوں کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اگر یہ تم سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑیں تو تم ان کے ساتھ کیا کرو. نمبر 1، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے. اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر نماز اور زکوٰۃ اور یہ سارے کام بھی اسلام کی شرط ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر دوبارہ عہد توڑیں گے، تمہارے دین پر حملے کریں، تو تم ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. اور پھر آخر میں جہاد کی رغبت دی گئی کہ کیا تم ایسے لوگوں سے جہاد نہیں کرو گے جنہوں نے اللہ کے نبی کو ان کے گھر سے نکالا، ان کی طرف زیادتی کی ابتدا کی. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ ڈرنے کا حقدار ہے، اور تم کیا سوچتے ہو کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا اور تمہیں اسی طرح چھوڑ دے گا جب تک کہ اس کی پرکھ نہ کی جائے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ہر وقت آزماتا رہتا ہے. ہمارے عمل کی بات اس رکوع میں کیا ہے؟ جو ہم نے اس خاص ایک ٹیکسٹ کے اندر جو آیتیں تھیں اس کے اندر سے سیکھی وہ کیا ہے کہ کبھی بھی انسان اس چیز کے لیے اپنے آپ کو بالکل کھلا نہ چھوڑ دے کہ میں دنیا میں جو کروں گا مجھے اس کا بدلہ نہیں ملے گا. آج ہم اس دنیا میں جو کرتے ہیں ہمیں اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملے گا اور مل رہا ہے، اور کل تو ملے گا ہی. بعض لوگ جنت کی تمنا کرتے ہیں لیکن جنت محض تمناؤں سے نہیں ملتی، اس کے لیے امتحان آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی میں آزماتا ہے कौन अपने मकसद में सच्चा है और कौन इस मकसद के अंदर बीच में ही अपनी हिम्मत को तोड़ देता है। बाज़ दफ़ा जिहाद का मैदान होता है और बाज़ दफ़ा दीन का मैदान होता है। दोनों रास्तों में याद रखिए कि इंसान तन्हा नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल है जब तक अपने इर्द गिर्द का माहौल न बनाया जाए। एक शख्स अकेला तलवार लेके निकलेगा तो मर जाएगा। इसी तरह अगर आप अपने घरों में, अपने खानदानों में अकेले दीन पे चलेंगे तो बहुत ज्यादा पनप नहीं सकेंगे, या तो उनको छोड़ के कट के अलग हो जाएंगे या फिर आप जब उनके साथ मिलेंगे तो फिर आपके ऊपर उनका रंग आएगा। लिहाजा इस्लाम हमें क्या सिखाता है, इज्तमाई कोशिशें करो, यानी इस पे अगर आप ये लिख लें कि दीन के नाम पे इज्तमाई कोशिशें करनी है। इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि एक एक इंसान को नहीं बल्कि एक एक जमात, एक एक गिरोह से दीन की बात की जाए। एक वक्त था कि आप एक शख्स के साथ बैठते हैं और उसको कहते हैं आओ दीन की बात है, अच्छी बात है, ये लो कुरान सुनो, ये पढ़ो। मुझे फील होता है इस दफ़ा कि अब वक्त वो आ गया कि हम जमातों में, गिरोहों में, दावतों में, पार्टियों में एक थीम बना के इस नीयत से बात करें कि लोगों देखो आओ मिल के काम करते हैं, चलो आओ आज मिल के इसकी कमिटमेंट करते हैं, चलो आओ आज मिल के दो नफिलों की नीयत करते हैं, हम पढ़ेंगे, चलो आओ मिल के इस कुरान के पारे को सुनते हैं, ताकि वो माहौल बनेगा जो फर्क सके। आपने कभी किसी फसलों के पास से गुजरे हों, खेत होते हैं, तो आपने कभी देखा कि कोई एक पौधा उगा हुआ है, यानी मसलन कपास है, या आप देखें कि कौन की फसल है, पूरी खेती होती है, तो आपकी नज़रों को भी अच्छी लगती है और फसल भी वहीं से कटती है। और अगर आप सोचें कि कोई एक पौधा कहीं लगा हो, फिर दूसरा उससे कोई एक फरलांग दूर, फिर दूसरा उससे दूर, तो क्या वो फसल किसी की किफ़ायत करेगी और उसको उतारने का, संभालने का खर्चा कितना बढ़ जाएगा? जहां एक जमीन के टुकड़े से फसल ले सकते थे, वो उसको कई मीलों में से लेनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में जिस तरह इज्तमाई तौर पे लोग जम के गुनाहों पे तावन कर रहे हैं, आप देखिए उनके अंदर इतना तावन है कि एक दूसरे के लिए रात दिन काम करते हैं सिर्फ किसी गुनाह की दावत देने के लिए। यानी मुझे खबरें मिलती रहती हैं कि किस तरीके की काम हो रहे हैं। मसलन बाज दफ़ा लोग कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करते हैं जिसमें सिंगर्स को बुलाते हैं, या बाज दफ़ा कोई ऐसे काम, और सब लोग इज्तमाई तौर पे क्लब के क्लब बना के उसके लिए कोशिश करते हैं, हजारों का टिकट। यानी बाज दफ़ा पता चलता है कि कई सौ, दो दो, तीन तीन सौ डॉलर का एक एक टिकट बिकता है और लोग लेते हैं। और वो कब देते हैं? अपने घरों में दावत करते हैं और उस दावत में सबको पहले खाना खिलाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं वो फलां प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, मैं उसकी स्पॉन्सर हूं, ये मेरे हाथ में टिकट है, आपको लेने पड़ेंगे, और लोग फिर मिलके काम करते हैं। तो क्या इस वक्त हमारे दिल में अभी वो दर्द नहीं आया कि पहली जिंदगी तो गुजर गई? मैं सोचती हूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी अपने लिए जितनी गुजारनी थी गुजार ली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत ऐश की, खाया पिया पहना ओढ़ा, गुना भी किए, महफिलें भी की, सब कुछ किया। क्या अब अगली ज़िंदगी अगर हम अपनी सोचें तो क्या हमें कुछ इसके अंदर एक मुजाहिदाना ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए? आप कहेंगे नहीं अभी तो हम जवान हैं, तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? जब कोशिश का वक्त नहीं, जब हिम्मत नहीं, जब ताकत नहीं, फिर इंसान कर नहीं पाता। तो लिहाजा सिर्फ पैगाम यही है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर दीन का दर्द पैदा कर दे और बेदीनी के जो अंधेरे हैं उसके अंदर हमारी ज़ात से अल्लाह ताला कोई ना कोई शम्मा रोशन करवा ले। रुकू नंबर 9 को देखते हैं। मा काना लिल मुश्रिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह, लायक नहीं कि मुश्रिक अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करें हालांकि वो खुद अपने कुफर के आप ही गवाह हैं, इनके आमाल गारत और अकारत हैं और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी तो इनके हिस्से में है जो अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखते हों, नमाजों के पाबंद हों, ज़कात देते हों और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरते हों। तवक्को है कि यही लोग यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। क्या तुमने हाजियों को पानी पिला देना और मस्जिद हराम की खिदमत करना इसके बराबर कर दिया है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और अल्लाह की राह में जिहाद किया? ये अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लज़ीना आमनू व हजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद किया, वो अल्लाह के हाँ बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं और यही लोग मुराद पाने वाले हैं। युबशिरहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिद्वानिम व जन्नातिल लहुम फीहा नईमुम मुकीम, इनका रब इन्हें खुशखबरी देता है अपनी रहमत की और अपनी रजामंदी की और जन्नतों की, इनके लिए वहाँ हमेशा की नेमते हैं। खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, वहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं, अल्लाह के पास यकीनन बहुत बड़े सवाब हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, ए ईमान वालों, अपने बापों को और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ अगर वो कुफ्र को ईमान से ज्यादा अजीज रखें। तुम में से जो भी इनसे मोहब्बत रखेगा वो पूरा जालिम है। आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो और वो हवेलियां जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर तुम्हें अल्लाह से और उसके रसूल से और इसकी राह में जिहाद से ज्यादा अजीज हैं, तो तुम इंतजार करो कि अल्लाह अपना अजाब ले आए और अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। रुकू नंबर 9, इसका उन्वान क्या है? मोहब्बतों का इम्तिहान। रुकू के शुरू में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि मस्जिदों के आबाद करने वाले लोगों में क्या खूबियां होती हैं, कौन लोग हैं, और इसका बैकग्राउंड भी आपको बता दूं कि मक्का वाले इस बात पे बड़ा फख्र करते थे कि हम बैतुल्लाह के मतवली हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं, देखभाल करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो कोई बड़ी बात नहीं। असल बात क्या है? मस्जिदों की आबादी किन लोगों से होती है? जो अल्लाह को और आखरत को माने, नमाज कायम करें, जकात दें, सीधे रास्ते पर चलें, अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें, ऐसे लोग जो हैं वो मस्जिदों को आबाद करते हैं। और इस तरह के लोग जो सिर्फ हाजियों को पानी पिलाएं या मस्जिद हराम की टेक केयर करें लेकिन अल्लाह और आखरत पर ईमान नहीं लाते या जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं करते, तो ये कभी भी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जो ये बाकी काम करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने दर्जा पाने वालों का जिक्र किया, कुछ काम जिक्र हुए कि जिनकी वजह से अल्लाह के यहाँ दर्जे मिलेंगे, वो कौन कौन से काम थे। आयत नंबर 20 की रोशनी में नोट कर लीजिए, ईमान लाने की वजह से दर्जे मिलेंगे, हिजरत करने से, अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करने से, और जो लोग ये काम कर लेंगे फिर अल्लाह ताला के हाँ वो हमेशा इज्जत पाएंगे। खुशखबरियां हैं उनके लिए जन्नत की और अल्लाह की रहमतों की, और हमेशा रहेंगे उसमें। यहां तक जो रुकू का हिस्सा है, इसमें से अमल की बात हमारे लिए क्या है कि जाहरी नेकियों पर इक्तफा नहीं करना, अपनी सोच और अपने शऊर के साथ इस्लाम की रूह को समझना है और अल्लाह के लिए यकसू होना है। इस बात पे बाज़ दफ़ा इस तरह से बात समझ में आती है, कुछ लोग डोनेशंस भी देते हैं, दीन के नाम पे माल भी लगाते हैं, कुछ और काम भी करते हैं लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ते। तो ऐसे लोगों के लिए इस रुकू में बहुत रग़बत है इस बात की कि तुम्हारी बाकी नेकियां कब कबूल होंगी, जब तुम वाकई अपनी ज़ात पर भी दीन को लागू करोगे। बाज़ लोग दूसरों को बहुत कहते हैं, बहुत सुनाते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए भी ऐसी ही बात है। और आखिरी आयत जो इस रुकू की थी, आयत नंबर 23 और 24, ये है असल में मोहब्बतों का इम्तिहान। अल्लाह ताला ने नाम ले लेके गिन के बता दिया कि अगर तुम्हारे बाप और भाई और बेटे और बीवियां और रिश्तेदार और तुम्हारे माल यानी तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारे घर जिनको तुम पसंद हैं, अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा पसंद है, तो फिर अल्लाह के अजाब के हुक्म का इंतजार करो। अगर हम जिंदगी में देखें तो यही चीज़ें हैं जो हमारे पांव पकड़ती हैं अल्लाह के रास्ते में आने से, जिहाद से रोकती हैं, नमाजें लेट होती हैं, अल्लाह के हुक्म टूटते हैं, नाफरमानी होती है, तो इन्हीं रिश्तों को खुश करने की वजह से। लिहाजा ज़रूरत किस बात की है कि अपनी तरजीहात को बदला जाए। सिला रहमी का हुक्म अल्लाह ने दिया है, इसमें कोई शक नहीं और बहुत ज्यादा जोर है उस पे। लेकिन सिला रहमी का ये मतलब नहीं कि हम रिश्तेदारों के लिए गुनाह कर लें। जिंदगी में एक असूल हमेशा याद रखिए कि किसी की हिदायत के लिए खुद गुमराह नहीं होना। मैंने जब कहीं आना था, यानी काम कुछ शुरू करना था, तो मैं बहुत एक अल्लाह ताला उम्र दे उनको, और डॉक्टर फजल अलाई साहब, आज भी आप उनकी बुक्स पढ़ते हैं, आपको थोड़े दिन पहले मैंने रिकमेंड भी करी, नबी पाक से मोहब्बत की अलामत उन्हीं की किताब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे रिश्तेदारी भी है, बहुत ही बामल इंसान है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई नसीहत करें, जब मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात जब होती है तो बहुत प्यारी नसीहतें करते हैं, पॉइंट्स में हमेशा बात करते हैं। आप उनकी किताबें भी देखेंगे तो पॉइंट्स में लिखते हैं, और मैंने भी ये पॉइंट्स देने के की बात जो सीखी उनसे, इसमें काफ़ी मैंने बातें सीखी। तो बहरहाल मुझे कहने लगे कि बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि किसी की हिदायत के लिए खुद गुमराह ना होना, दीन की तबलीग करना, लेकिन उन पाबंदियों को जरूर जहन में रखना कि जो दीन की हैं। फिर मुझे मिसाल उन्होंने क्या दी, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लम जब मक्का में थे तो उस वक्त एक रिवाज क्या था कि जब कोई अहम ऐलान करना होता तो लोग सफा पहाड़ पे जाते, अपनी कमीज उतारते, शर्ट उतार के उसको लहराते थे। ये मौजूद है आज भी किताबों में। तो इस मंजर को देख के दूसरे लोग समझ जाते कि इस शख्स के पास बहुत बड़ी अहम खबर है, सब लोग जल्दी से जमा होते और फिर वो अपनी बात बयान कर देते। कोई भी अहम खबर होती, दुश्मन का हमला या कुछ सो ऑन, कोई भी अनाउंसमेंट होती। जब नबी सल्लम आए, इस्लाम आया, दीन आया, तो लोगों को पैगाम देना था, तो आपसे लोगों ने इजाजत तलब की कि हम भी लोगों को इसी तरीके से तलब करते हैं, कि यानी हम भी अपने कपड़े उतार के लोगों को दिखाएं, लोग जमा हों तो फिर आए। तो नबी सल्लम ने मना कर दिया कि इस्लाम में ये तरीका पसंदीदा नहीं, इससे रुक जाओ। तो बात का खुलासा क्या है कि दोस्तियां, रिश्तेदारियां, मोहब्बतें, ये सब अपनी जगह, लेकिन इनमें से कोई हमारी जगह जहन्नुम में नहीं जाएगा। हमने अगर इन लोगों के साथ मामलात करते वक्त कहीं भी अगर अपने आप को कमज़ोर पाया तो वहीं हमारा इम्तिहान होगा। और मैंने जिनकी बात की उनको मैंने इतना बामल इस बात में देखा, सगी बहन के घर भी मौका होता है लेकिन अगर उनको पता होता है नाफरमानी की कोई चीज़ है तो नहीं जाते या किसी भी तरह से वहां हिस्सा डालते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त बात सिर्फ हमारे अपनी ज़ात तक रखने की है, और वो क्या है कि हमने तरजीहात को मुतय्यन करना है, जिसको जैसे। और फिर आप कहेंगे क्या सबको छोड़ दें, छोड़ना नहीं है, साथ लेके चलना है, इनका गम लगाना है। पीछे दो रुकू पहले इसी का हवाला दिया था मैंने आपको कि हमने इनको साथ लेके चलना है दीन के सफर में। नियत कीजिए इस रमजान के अंदर अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगे, तहज्जुदों में दुआएं मांगे। यकीन करें कि कुछ रिश्तेदारों से इतनी मोहब्बत होती है कि लिटरली मैंने आंसू बहाए उनके लिए कि अल्लाह इनको दीन दे दे, कितने प्यारे लोग हैं। यकीन करें कुछ लोग बड़े सादे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनको पता नहीं है, उन तक दिल ने बेबात नहीं उतरी। और मैंने देखा है कि जिसके लिए आपने तड़प के दुआ मांगी है फिर अल्लाह ताला ने वाकई उनको चुना है। हमारे कमी है खलूस में और मांगने में, अल्लाह ताला की देन में कमी नहीं है। क्या हम ये पसंद कर सकते हैं हम जन्नत में जाएं और हमें पता चले हमारी खाला तो वहां आई नहीं। सोचिए जरा अपनी खाला, बात लफ्ज़ बोलते हुए भी मोहब्बत से मुंह भर जाता है ना, कितना प्यारा रिश्ता है। मेरी फूफी तो जन्नत में आई नहीं, और अल्लाह ना करे हम में से किसी को पता चले हम तो जन्नत में आ गए और बच्चे तो यहाँ आए ही नहीं, शौहर तो पीछे ही रह गया, क्या वो जन्नत जन्नत होगी। हम खुश होते हैं तो हमारा फौरन दिल करता है रिश्तेदारों को मिलते हैं, चलो अब उनको ये खुशखबरी देते हैं। अक्सर लोग शादी होती है फिर जाते हैं अपने वतन, सबको जाके मिलते हैं, खुश खुश होते हैं कि देखो हम कितने खुश हैं। मैं देखती हूँ कि इंसान गम तन्हा रह सकता है, गमगीन रह सकता है, लेकिन खुशियों में उसका दिल चाहता है कि वो दूसरों के साथ शेयर करे। तो क्या हम दीन की खुशी लोगों से शेयर ना करें, क्या करें, बातें किया करें, अपनी जज्बात अपनी फीलिंग्स लोगों को बताया करें, उनसे जिक्र करें, देखें मुझे इससे कितनी सुकून मिल रहा है, कितनी खुशी है। ये नहीं हो सकता कि हमारे रिश्तेदारों में कोई परेशान ना हो, परेशान लोग आपका बेहतरीन हदफ है। करीब बैठिए, बात करिए, मौका देखिए, उनकी मदद कीजिए, कुछ माली जरूरतमंद होते हैं उनकी जरूरत पूरी कीजिए। बाद लोगों को मशवरा चाहिए होता है उनको मशवरा दें, पहले कुर्बत पैदा करें फिर उसके बाद अपने अच्छे जज्बात रखें, फिर लोग खुद भी देखते हैं। मैंने देखा है कि रिश्तेदार जितने बड़े गवाह होते हैं आपकी जिंदगी के उतने दूसरे नहीं होते, क्योंकि वो आपको बचपन से लेके बुढ़ापे तक देख रहे होते हैं। तो लिहाजा कोशिश करनी है हम सब ने कि हर वो चीज जो हमारे रास्ते में दीन के आगे रुकावट बनती है उस रुकावट को दूर करना है और उनको फिर साथ लेके चलना है। फिर इसमें हमने अपना मुहासबा भी करना है अपने घरों के नाते से, क्या मेरी अपने घर की वजह से कोई नमाज तो नहीं छूटती? लिखिए, वो घर जिसके बाहर मैंने लिखा है हास अमिन फसल रब्बी, उस फसल रब्बी की वजह से नमाजें तो नहीं छूटती? क्या उस घर में शैतान को राजी करने की चीजें तो नहीं सजा रखी? क्या उस घर को सिर्फ दिखावे की हद तक तो नहीं मैंने शो ऑफ करके रखा हुआ? फिर तिजारत के नाते से आप लिखिए या अपने शौहरों से जाके शेयर कीजिए कि क्या मेरी तिजारत मुझे अल्लाह के दीन से तो नहीं रोक रही? क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जिसके बदले में अल्लाह का हुक्म आ सकता है? नमाजों का वक्त, हराम हलाल, ये सब चीज़ें इसमें देखने की हैं। बहुत प्यारी आयतें हैं, आप लोग इस पर तदब्बुर कर सकते हैं।